मैं सुरेंद्र कुमार पटेल आज आप लोगों के लिए जलवायु विज्ञान के अंतर्गत तापमान अर्थात टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। तापमान किसी वस्तु की ऊष्मा की मात्रा को बताता है। जब ऊष्मा की मात्रा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है तो पहले वाली वस्तु को अधिक तापमान वाली वस्तु कहा जाता है। यहाँ पर तापमान का तात्पर्य वायुमंडलीय वायु के तापमान से है। यह तापमान अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त होता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से पार्थिव विकिरण से संबंधित है। सामान्यतः ऊष्मा एवं तापमान दोनों शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में किया जाता है, परंतु वास्तविकता यह है कि इन दोनों के बीच एक सूक्ष्म अंतर होता है। ऊष्मा वास्तव में ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को गर्म करती है, अर्थात ऊष्मा से ऊर्जा की मात्रा का बोध होता है, जबकि तापमान यह बतलाता है कि कोई पदार्थ कितना गर्म या ठंडा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ऊष्मा कारण है एवं तापमान उसका प्रभाव। मरुस्थली भागों में वायुमंडल में जल वाष्प की कमी होने के कारण ही रात्रि का तापमान काफी नीचा हो जाता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में पार्थिव विकिरण द्वारा तापमान आसानी से शून्य में चला जाता है। ऊंचाई के साथ साथ आने वाली एवं बहिर्गामी दोनों ही विकिरण बढ़ती जाती है, अतः उच्च पर्वतों को पृथ्वी की विकिरण खिड़की रेडिएशन विंडो भी कहा जाता है। तापमान का अंकन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर अतापमापी थर्मोमीटर सभी मौसमी वेधशालाओं में एक निश्चित समय पर वायुमंडलीय ताप का मापन किया जाता है। यह मापन थर्मामीटर की सहायता से किया जाता है। एक लकड़ी के बॉक्स में चार थर्मामीटर रखे रहते हैं तथा लकड़ी का बॉक्स चार पैरों की सहायता से लगभग 4 फीट की ऊंचाई पर स्थित होता है। बॉक्स की बनावट ऐसी होती है जिसमें सभी थर्मामीटर बाहरी वायु के संपर्क में रहें, लेकिन सूर्य की किरणें अंदर प्रविष्ट न कर पाएं। बॉक्स खोलते समय भी इस पर सूर्य की किरणें न पड़े, इसके लिए उत्तरी गोलार्ध में मौसमी वेधशालाओं का मुख उत्तर की तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की तरफ रखते हैं। इस प्रकार के बॉक्स को स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। उपयुक्त बॉक्स में प्रयुक्त चारों तापमापी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला पारायुक्त उच्चतम तापमापी मैक्सिमम थर्मोमीटर, दूसरा एल्कोहल युक्त न्यूनतम तापमापी मिनिमम थर्मोमीटर, तीसरा शुष्क बल्ब तापमापी ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, चौथा नम बल्ब तापमापी वेट बल्ब थर्मोमीटर। शुष्क बल्ब तापमापी पारा युक्त सेंटीग्रेड पैमाने वाला थर्मामीटर है। इसकी सहायता से स्क्रीन के स्तर की वायु का तात्कालिक तापमान पढ़ा जाता है। नम बल्ब तापमापी की सहायता से दिन का नम तापमान नापा जाता है। इसको आर्द्रता के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। थर्मोग्राफ की सहायता से वायुमंडलीय तापमान का लगातार एवं स्वयं मापन होता रहता है। यह एक स्वचालित यंत्र है। इसका प्रयोग उस समय करते हैं जब अस्थायी रूप से लगातार तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ग्रॉस मिनिमम थर्मोमीटर यह तापमापी एल्कोहल से भरा न्यूनतम तापमापी की तरह होता है। इसकी सहायता से धरातल के नजदीक का तापमान अंकित करके फसलों की पाले से रक्षा की जा सकती है। धरातल के नजदीक का तापमान न्यूनतम तापमान से 4.5 डिग्री कम पाया जाता है। थर्मोकपल एंड थर्मिस्टर इसमें विद्युतीय धारा के प्रतिफल के रूप में तापमान का आकलन होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म मौसमी आंकड़ों के लिए किया जाता है। इस यंत्र की सहायता से मिट्टी वनस्पति एवं कपड़ों का भी तापमान ज्ञात किया जा सकता है। ताप इकाई, टेम्परेचर यूनिट, वायुमंडलीय तापमान के मापन के लिए साधारणतया सेंटीग्रेड अथवा फारेनहाइट मापक का प्रयोग किया जाता है। सेंटीग्रेड मापक में जल का क्वथनांक 100 डिग्री तथा हिमांक 0 डिग्री होता है तथा और फारेनहाइट मापक में जल का क्वथनांक तथा हिमांक क्रमशः 212 डिग्री एवं 32 डिग्री होता है। दोनों ही मापक 40 डिग्री पर समान तापमान दर्शाते हैं। केल्विन मापक तीसरा मापक है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड मापक जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड मापक के -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 0 डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 32 + 9.9/5 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 5/9 कोष्टक में फारेनहाइट -32 केल्विन डिग्री पैमाना बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड +273। किसी वस्तु का तापमान निकालने की भी एक सीमा होती है। उस सीमा के नीचे तापमान नहीं निकाला जा सकता एवं वस्तु की आंतरिक शक्ति शून्य हो जाती है। इस शून्य को निरपेक्ष शून्य एब्सोल्यूट जीरो या केल्विन शून्य कहा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो का मान -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अंकन मेजरमेंट, मौसम विज्ञान में तापमान का विवेचन महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी स्थान का तापमान सूर्यातप से ही संबंधित है लेकिन उस स्थान का दैनिक अधिकतम तापमान दोपहर को नहीं बल्कि दोपहर के 2-3 घंटे बाद मिलता है। दोपहर के बाद सूर्यातप की मात्रा घटने लगती है तथा जब तक सूर्यातप की मात्रा पार्थिव विकिरण से अधिक रहती है तब तक पृथ्वी को कुछ न कुछ तापमान प्राप्त होता रहता है एवं इस प्रकार तापमान बढ़ता भी रहता है। जब सौर विकिरण तथा पार्थिव विकिरण की मात्रा बराबर हो जाती है तो उस समय दिन का अधिकतम तापमान पाया जाता है जिसको दैनिक उच्चतम तापमान कहा जाता है। इसके बाद पार्थिव विकिरण की मात्रा अधिक होने के कारण तापमान घटने लगता है। इस कारण रात्रि का न्यूनतम तापमान रात्रि के 12 बजे नहीं बल्कि सूर्योदय के ठीक पहले अंकित किया जाता है क्योंकि सूर्योदय तक पार्थिव विकिरण के कारण कुछ न कुछ ऊष्मा का ह्रास होता रहता है। इस तापमान को दिन का न्यूनतम तापमान कहा जाता है। सूर्यातप की अधिकतम एवं न्यूनतम मात्रा में तथा दैनिक तापमान की अधिकतम एवं न्यूनतम मात्रा में सामंजस्य नहीं होता है। इसे तापमान की शिथिलता लैग ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। औसत दैनिक तापमान बराबर 24 घंटे का उच्चतम तापमान तथा 24 घंटे का न्यूनतम तापमान 2 होता है। मौसम स्टेशनों पर उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान ही विचरणीय होता है। इस अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर डायूर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। इस तरह महीने एवं वर्ष के प्रत्येक दिन के औसत तापमान को औसत मासिक तापमान मीन मंथली टेम्परेचर एवं औसत वार्षिक तापमान मीन एनुअल टेम्परेचर कहा जाता है। औसत मासिक तापमान बराबर महीने के प्रत्येक दिन के औसत दैनिक तापमान का योग 2 महीने में दिनों की संख्या तथा औसत वार्षिक तापमान बराबर हर महीने की औसत मासिक तापमान का योग 12। तापमान वितरण टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें पहले हम उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे जो निम्नलिखित हैं। पहला अक्षांशीय स्थिति लैटिट्यूडनल पोजीशन, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें के ठीक लंबवत पड़ने के कारण तथा रात दिन की समय अवधि समान अवधि के कारण सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, जिस कारण तापमान भी इसी समय अधिक हो जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर बढ़ते अक्षांशों के साथ दिन की अवधि अधिक होने पर भी सूर्य की किरणों के अधिक तिरछेपन के कारण सूर्यातप घटता जाता है। इस प्रकार भूमध्य रेखा से ऊंचे अक्षांशों की ओर औसत तापमान कम हो जाता है, परंतु अधिकतम सूर्यातप प्राप्त करने वाली भूमध्य रेखा पर अधिकतम तापमान न होकर जुलाई में 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर होता है। इसे तापीय विषुवत रेखा भी कहते हैं। दूसरा, धरातली ऊंचाई, सरफेस हाइट फ्रॉम सी लेवल। सागर तल से ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। वायुमंडल अपनी अधिकांश ऊष्मा पृथ्वी द्वारा होने वाले विकिरण से प्राप्त करती है, अतः धरातल के संपर्क में आने वाला भाग सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। ऊपर जाने पर यह मात्रा घटती जाती है। वायुमंडल के निचले भाग में वायु की परतें मोटी होती हैं, जो कि ऊपर जाने पर पतली होती जाती हैं। पार्थिव विकिरण का अवशोषण करने वाले धूलिकण तथा जलवाष्प की अधिकता वायुमंडल के निचले भाग में अधिक होती है तथा ऊंचाई के साथ यह घटती जाती है। ऊंचाई के साथ तापमान घटने की दर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर पर होती है। तीसरा, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सागर के समीपी भागों में सागरों का समकारी प्रभाव होता है। वह अपने आसपास के भागों का तापमान न तो अत्यधिक होने देता है न तो बहुत कम। यही कारण है कि सागरवर्ती भागों में तापांतर कम होता है तथा उससे दूर जाने पर बढ़ता जाता है। चौथा, स्थल तथा जल का असमान वितरण। तापमान के अक्षांशीय वितरण क्रम को स्थल एवं जल का असमान वितरण अधिक प्रभावित करता है। स्थलीय भाग जल की अपेक्षा जल्दी गर्म एवं ठंडे हो जाते हैं। इसी कारण स्थलीय भाग पर वार्षिक तापांतर अधिक होता है। स्थल तथा जल के तापमान की विभिन्नता को मुख्य तीन कारण हैं। ए, जल की गति के कारण स्थलीय भाग में क्षैतिज एवं लंबवत दोनों प्रकार का चलन होता है एवं प्राप्त ऊष्मा की मात्रा का वितरण पूरे जल में हो जाता है, जबकि स्थलीय भाग में अवशोषित ऊष्मा धीरे धीरे संचालन विधि से नीचे प्रवेश करती है। बी, स्थलीय भाग अपारदर्शक तथा जल लगभग पारदर्शक है, जिसमें विकिरण द्वारा ऊष्मा अधिक गहराई तक आसानी से पहुंच जाती है। यह ऊष्मा स्थल में कम गहराई तक तथा देर से पहुंचती है, अतः प्राप्त सूर्यातप धरातल के बराबर होने पर जल के अधिक भाग को गर्म करता है। सी, स्थल की अपेक्षा जल की सापेक्षिक ऊष्मा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अधिक होती है। इस गुण के कारण जल की निश्चित मात्रा के 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है उससे कम ऊष्मा उतनी ही मात्रा के स्थल का उतना ही ताप बढ़ाने में आवश्यक होती है। अतः निश्चित सूर्यातप की मात्रा जल की अपेक्षा स्थल पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। स्थल एवं जल के इसी प्रभाव के कारण सामान्य तौर पर स्थल के बीच वाले भागों में जाड़े का मौसम अधिक गर्म होता है, जबकि जल के ऊपर या तटीय भागों में इसके विपरीत स्थिति होती है। अतः तटवर्ती या समुद्री जलवायु मध्यम हो जाती है तथा दैनिक एवं वार्षिक तापांतर कम हो जाता है। चौथा, नहीं, ये पांचवा भाग है, जिस धरातल का स्वभाव, नेचर ऑफ सरफेस। धरातली स्वभाव से भी तापमान वितरण प्रभावित होता है। हिमाच्छादित सतह से सौरिक विकिरण के अधिक मात्रा में परावर्तित हो जाने से कम ऊष्मा मिलने से तापमान कम हो जाता है, जबकि रेतीली मिट्टी में सौरिक विकिरण का अधिक अवशोषण होने से तापमान दिन में अधिक हो जाता है। सौरिक ऊर्जा का हिम से 70-90% भाग तथा घास वाले भाग से 14-37% भाग, काली मिट्टी से 8-14% भाग तथा कोणधारी वन से 10% भाग का परावर्तन कर दिया जाता है। वनस्पति से आच्छादित भाग में अधिक ऊष्मा वृक्षों द्वारा प्राप्त जल के वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है, जिस कारण सतह का तापमान ऊंचा नहीं हो पाता है। छठा, धरातली ढाल एवं पर्वतों की स्थिति, सरफेस स्लोप एंड माउंटेनियस पोजीशन। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरोन्मुख नॉर्थ फेसिंग स्लोप ढाल सामान्यतः कम सूर्यातप एवं दक्षिणी मुखी साउथ फेसिंग स्लोप अधिक सूर्यातप प्राप्त करते हैं, अतः साउथ फेसिंग स्लोप पर अधिक तापमान पाया जाता है। साधारणतया यह कहा जा सकता है कि सूर्य के सामने वाले भाग पर लंबवत किरणों के कारण अधिक तापमान तथा विपरीत ढाल पर कम तापमान होता है। तापमान के वितरण पर पर्वतों की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। ऊंचे पर्वत ठंडी हवाओं के मार्ग में बाधक होते हैं। यूएसए में अर्थात अमेरिका में राकी पर्वत पछुआ हवाओं का कनाडा के पूर्वी भागों में मोड़ देता है। इसी तरह एशिया में हिमालय तथा यूरोप में आल्पस पर्वत ध्रुवी ठंडी हवाओं का प्रवेश करने से रोकते हैं। सातवां, सागरी जलधाराएं ओसेनिक करंट। समुद्री जलधाराओं द्वारा ऊष्मा की मात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती रहती है, अतः ध्रुव की तरफ जाने वाली जलधाराएं तापमान बढ़ा देती हैं, जबकि भूमध्य रेखा की तरफ आने वाली जलधाराएं तापमान घटा देती हैं। गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग का तथा क्यूरोसिवियो जापान तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अधिक ऊष्मा लाती है, अर्थात तट का तापमान बढ़ा देती है। लेब्राडोर, पेरू एंड कैलिफोर्नियन करेंट्स ठंडी होने के कारण प्रभावित क्षेत्र में तापमान अधिक नीचा कर देती हैं। इस प्रकार गर्म तथा ठंडी धाराएं किसी स्थान पर मिलने पर कोहरा उत्पन्न करती हैं। आठवां, प्रचलित हवाएं प्रिवेलिंग विंड। प्रचलित पवन अपने क्षेत्र से चलकर प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन लाती है। निचले अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली हवाएं तापमान अधिक तथा ऊंचे अक्षांशों से निचले अक्षांशों की ओर आने वाली हवाएं तापमान कम कर देती हैं। सागरी भागों से स्थलीय भागों की ओर चलने वाली हवाएं वहां पर सागरी प्रभाव लाती हैं, जिससे तापमानतर कम हो जाता है। पर्वतों के ऊपरी भाग से आने वाली हवाएं घाटियों में तापमान नीचा कर देती हैं। चक्रवातों के आने पर तापमान ऊंचा तथा चले जाने के बाद अचानक कम हो जाता है। गर्म सागरी धाराओं के ऊपर से आने वाली हवाएं तटीय भागों पर तापमान ऊंचा कर देती हैं, जबकि ठंडी धाराओं के संपर्क में आने वाली हवाएं तटीय भाग में तापमान कम कर देती हैं। अस्थायी ग्रही हवाएं जो कि व्यापारिक पछुआ और ध्रुवी होती हैं भी अपनी विशेषताओं से प्रभावित क्षेत्र में तापमान में अंतर लाती हैं। तापमान का प्रादेशिक वितरण रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। जब समान तापमान वाले अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी को बांटकर तापमान के वितरण का अध्ययन करते हैं तो उसको तापमान का प्रादेशिक वितरण कहते हैं। प्राचीन ग्रीक विचारकों ने पृथ्वी को तीन भागों में बांटकर तापमान का अध्ययन किया था। पहला उष्णकटिबंधीय, जिसे टॉरिड जोन कहते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार 23.5 अंश नॉर्थ से लेकर 23.5 अंश साउथ तक होता था। दूसरा शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन, यह 23.5 अंश नॉर्थ से 66.5 अंश नॉर्थ तथा 23.5 अंश साउथ से 66.5 अंश साउथ होता है। तीसरा शीत कटिबंध फ्रिजिड जोन, यह पहला 66.5 नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तथा 66.5 से 90 डिग्री साउथ होता है। कोपेंस का वर्गीकरण, कोपेंस क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर। कोपेन महोदय ने उच्चतम निम्नतम तथा ताप की अवधियों के विशद अध्ययन के बाद पृथ्वी को निम्न ताप कटिबंध में विभाजित किया, जिसमें पहला मेगा थर्मल जोन, इस कटिबंध में सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा मेजो थर्मल जोन, इस भाग में सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री से कम परंतु -3 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। तीसरा माइक्रो थर्मल जोन, इस भाग में सबसे ठंडे महीने का ताप -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किंतु सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। चौथा पोलर जोन, इस भाग में सबसे गर्म महीने का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। तापमान का सामान्य प्रादेशिक वितरण, इसमें पहला भूमध्य रेखीय प्रदेश इक्विटोरियल रीजन, विषुवत रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ से व 5 डिग्री साउथ के बीच विस्तृत भाग को इस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। प्रकाश रेखा इल्यूमिनेशन लाइन विषुवत रेखा को सदैव 2 बराबर भागों में काटती है, जिस कारण दिन तथा रात्रि बराबर समय 12-12 घंटे की होती है। सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, जिस कारण वर्ष भर तापमान ऊंचा बना रहता है। वार्षिक तापांतर स्थलों पर 4 डिग्री फारेनहाइट तथा सागरों पर केवल 1 डिग्री फारेनहाइट ही होता है, परंतु औसत दैनिक तापांतर 10 से 15 डिग्री फारेनहाइट तक होता है। कभी भी तापमान 67 डिग्री फारेनहाइट से कम नहीं होने पाता। सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के कारण साल में 2 उच्चतम तथा 2 न्यूनतम तापमान होते हैं, परंतु इनमें खास अंतर नहीं हो पाता है। अत्यधिक तापमान के कारण सदैव वायुमंडल में नमी बनी रहती है, जिस कारण यह प्रदेश मानव के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं होता है। सागर तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वतीय भाग में हिमपात होता है। दूसरा अंतर उष्णकटिबंधीय प्रदेश इंटरट्रॉपिकल रीजन, इस प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री तथा 12 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यद्यपि तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, तथापि ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं के बीच अंतर अस्पष्ट हो उठता है। यद्यपि सागरी भागों पर तापमान का ऋतुगत परिवर्तन अधिक नहीं हो पाता, परंतु महाद्वीपों पर ग्रीष्मकाल अधिक गर्म तथा शीत ऋतु ठंडी होती है। सबसे उष्ण तथा ठंडे महीनों का तापमान क्रमशः 82 डिग्री फारेनहाइट तथा 70 डिग्री फारेनहाइट होता है। इस तरह वार्षिक तापांतर 12 से 15 डिग्री फारेनहाइट तथा दैनिक तापांतर 20 डिग्री फारेनहाइट तक बढ़ जाता है। तीसरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश ट्रॉपिकल जोन, 12 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांशों के बीच के भाग को उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश में गर्मी के दिन 14 घंटे के होते हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से साल में 1 बार उच्चतम तथा 1 बार न्यूनतम तापमान अंकित किया जाता है। इस भाग के मरुस्थल के ऊपर संसार का उच्चतम तापमान पाया जाता है। ग्रीष्म काल में मरुस्थलों में तापमान 120 डिग्री फारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है। इन मरुस्थलों के ऊपर दैनिक तापांतर भी अधिक पाया जाता है। चौथा, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, सब ट्रॉपिकल रीजन। उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का विस्तार 25 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में मिलता है। सूर्य की अधिकांश किरणें तिरछे पड़ती हैं, जिससे ऋतुवत शीत ऋतु में तापमान न्यून एवं यदा कदा ध्रुवी हवाओं के प्रवेश करने के कारण तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के सबसे गर्म और ठंडे महीने का औसत तापमान क्रमशः 75 डिग्री एवं 48 डिग्री फारेनहाइट होता है। बगदाद का सबसे गर्म और ठंडे महीनों का तापमान क्रमशः 94 डिग्री फारेनहाइट तथा 46 डिग्री फारेनहाइट होता है। कभी कभी यहाँ पर जुलाई में 109 डिग्री से 113 डिग्री फारेनहाइट तथा जनवरी में 31 डिग्री फारेनहाइट तक तापमान अंकित किया जाता है। महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों में औसत वार्षिक तापांतर 30 डिग्री फारेनहाइट तथा आंतरिक भागों में 30 से 70 डिग्री फारेनहाइट तक होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जल का विस्तार के कारण वार्षिक तापांतर 20 से 30 डिग्री फारेनहाइट होता है। प्रायः प्रत्येक भाग में कम से कम 4 मास का तापमान 70 डिग्री से अधिक तथा 4 मास का 60 डिग्री फारेनहाइट से कम होता है। पांचवा, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, टेम्परेट रीजन। दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री से 66 से 1/2 डिग्री अक्षांशों के बीच वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत होता है। दिन की अवधि लंबी होने पर भी सूर्य के किरणों के अत्यधिक तिरछेपन के कारण तापमान बहुत कम हो जाता है। जाड़े में तापमान हिमांक के नीचे गिर जाता है, जिस कारण कनाडा, साइबेरिया आदि का अधिकांश भाग हिमाच्छादित हो जाता है। कहीं कहीं पर गर्म सागरी धाराओं के कारण जाड़े का तापमान नीचा नहीं हो जा पाता, उदाहरण के लिए उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा इंग्लैंड का भाग। दक्षिणी पश्चिमी आयरलैंड में स्थित वेलेनाटिया नगर का तापमान इसी कारण किसी भी मास में 40 डिग्री फारेनहाइट से कम नहीं हो पाता है। शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के बीच अंतर अत्यधिक हो जाता है। व्लादिवोस्टोक का सबसे गर्म तथा ठंडे महीने का तापमान क्रमशः 69 डिग्री फारेनहाइट तथा 6 डिग्री फारेनहाइट होता है, जिस कारण वार्षिक तापांतर 63 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है। यहीं पर कभी कभी गर्मियों में तापमान 66 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है तथा सर्दियों में -22 डिग्री फारेनहाइट तक गिर जाता है, जिस कारण वार्षिक तापांतर सर्दियों में -22 डिग्री फारेनहाइट तक गिर जाता है जिस कारण वार्षिक तापांतर 88 डिग्री फारेनहाइट तक हो जाता है। यह तापांतर कभी कभी विशेष परिस्थितियों में 148 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। छठा, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा रीजन। शीतोष्ण ध्रुवीय प्रदेशों के बीच टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है। इस प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता सूर्य की किरणों का धरातल के समांतर पाया जाना है, जिसके कारण अधिकांश महीनों का तापमान हिमांक के नीचे रहता है। बर्खोयांस्क रशिया का संसार का सबसे ठंडा स्थान है, जहां न्यूनतम तापमान -93 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। सातवां, ध्रुवीय प्रदेश, पोलर रीजन। ध्रुवीय प्रदेश ध्रुवों के चारों तरफ फैला है। इस प्रदेश के अधिकांश भाग सूर्य का दर्शन नहीं कर पाते हैं। उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग साल भर बर्फ से ढका रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के पास जनवरी का तापमान -40 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है। वार्षिक तापांतर 60 डिग्री फारेनहाइट से 70 डिग्री फारेनहाइट मिलता है। दक्षिणी गोलार्ध में धरातल पर सूर्य की किरणें नहीं दिखाई पड़ती हैं। दक्षिणी ध्रुव के पास एंटार्क्टिका महाद्वीप के कारण जाड़े का तापमान -80 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यहाँ वार्षिक या दैनिक तापांतर बहुत कम होता है क्योंकि सूर्यातप के अभाव में तापमान ऊंचा नहीं हो पाता है। तापमान का लंबवत वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। वैज्ञानिक पर्यवेक्षणों के आधार पर अब यह तय हो चुका है कि वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट आती जाती है, परंतु तापमान की गिरावट की दर में औसत दिन की अवधि तथा स्थिति के अनुसार अंतर आता रहता है। औसत रूप से तापमान प्रति 1000 फीट की ऊंचाई पर 3.6 डिग्री फारेनहाइट अथवा प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से कम हो जाता है। तापमान के इस पतन को सामान्य पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। यह तापमान के अक्षांशीय क्षैतिज पतन दर से 1000 गुना अधिक होता है। स्पष्ट है कि वायुमंडल के निचले भाग में जहां पर वह धरातल के संपर्क में आता है अधिकतम तापमान होता है तथा यह बढ़ती ऊंचाई के साथ निरंतर कम होता जाता है। इस विवरण से प्रमाणित हो जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल को ऊष्मा पार्थिव विकिरण से ही प्राप्त होती है। ऊंचाई के साथ तापमान घटने के कारण कई बताए जाते हैं, जिसमें पहला, वायुमंडल का निचला भाग पृथ्वी के संपर्क में होने से शीघ्र ऊष्मा प्राप्त कर लेता है तथा स्वयं गर्म होने के बाद संवहन तरंगों से ऊष्मा ऊपर की ओर स्थानांतरित करता है। इस प्रकार वायुमंडल की प्रत्येक ऊपर की परत निचली परत की अपेक्षा देर में तथा कम मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करती है। दूसरा, वायुमंडल के निचले भाग में ऊपर स्थित वायु परतों के कारण वायु परतों का भार अधिक होता है तथा ऊपर जाने पर हवा का घनत्व कम हो जाता है तथा हवा फैलकर विरल हो जाती है। तीसरा, पार्थिव विकिरण का अवशोषण करने वाले धूलिकण, जल वाष्प तथा गैसों का सांद्रण निचले भाग में अधिक होता है तथा ऊंचाई के साथ कम हो जाता है। फलस्वरूप निचले भाग में पार्थिव ऊर्जा का अवशोषण अधिक होने से तापमान अधिक हो जाता है। ऊंचाई के साथ पार्थिव ऊर्जा के घटते अवशोषण के कारण तापमान घटने लगता है। तापमान का पतन केवल परिवर्तन मंडल तक ही होता है, जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर तक होती है। जाड़े की अपेक्षा गर्मियों में उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, परंतु इस सीमा के बाद तापमान में नगण्य सा अंतर होता है। इस मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर तथा स्ट्रेटोस्फीयर को अलग करने वाली परत को ट्रोपोपॉज कहते हैं। परिवर्तन मंडल में तापमान के सामान्य विवरण के कुछ अपवाद भी होते हैं। कभी कभी ऊंचाई के साथ कुछ दूरी तक तापमान बढ़ने लगता है, अर्थात ऊपर तापमान अधिक तथा नीचे कम होता है। इसे तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तापमान का प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। सामान्य नियमानुसार टोपोस्फीयर में ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, परंतु इस सामान्य ताप पतन के विपरीत कभी कभी कालिक एवं तथा स्थानीय रूप से ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। इसे ऋणात्मक ताप पतन दर, निगेटिव लैप्स रेट की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस क्रिया के कारण नीचे अपेक्षाकृत ठंडी वायु की परत तथा उसके ऊपर गर्म वायु की परत स्थिति हो जाती है। इस स्थिति या दशा को तापमान का प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। यह स्थिति धरातल के निकट भी हो सकती है। अधिक ऊंचाई पर होने वाला प्रतिलोमन अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि पार्थिव विकिरण द्वारा अपनी ऊपरी गर्म परत को ठंडा करने में अधिक समय लगता है, जबकि धरातल के निकट होने वाला प्रतिलोमन अल्पकालिक होता है, क्योंकि विकिरण द्वारा धरातल के निकट ठंडी परत का लोप शीघ्र हो जाता है। तापीय प्रतिलोमन के कारण ऊपर गर्म तथा हल्की वायु तथा नीचे ठंडी एवं भारी वायु के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, परंतु यह स्थिरता सौरिक तथा पार्थिवी विकिरण द्वारा विलीन हो जाती है। तापीय प्रतिलोमन ध्रुवीय प्रदेशों, मध्य अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों तथा घाटियों में अधिक होता है। गर्म तथा ठंडी जलधाराओं के संगम स्थल पर भी यह दशा उपस्थित हो जाती है। तापीय प्रतिलोमन के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। पहला, धरातलीय प्रतिलोमन, ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन। दूसरा, घाटी वायु प्रतिलोमन, एयर ड्रेनेज इन्वर्जन। तीसरा, वातागृह प्रतिलोमन, फ्रंटल इन्वर्जन। चौथा, यांत्रिक प्रतिलोमन, मैकेनिकल इन्वर्जन। पांचवा, अभिवहनी या संपर्कीय प्रतिलोमन, एडवेक्शनल इन्वर्जन।